सबक नंबर 179, आयत नंबर 32 से 34, सूरत नूर। लेसन नंबर 179, आयत नंबर 32 to 34, सूरत नूर। ब्राह रास्त आयतों पर जाने से पहले हम आज के सबक का खुलासा देखेंगे। आज कल हम सूरत नूर में वो तमाम मीन्स और जराए जिनके जरिए से किसी सोसाइटी से बेहयाई और फहाशी का खात्मा करें उसको पढ़ रहे हैं। अभी तक हम इस सिलसिले में जो चीज़ पढ़ चुके वो सबसे पहली चीज इस्तेज़ान थी कि किसी के घर आते वक्त इजाज़त ली जाए, बेरोक टोक दूसरों के घरों में आने को ख़त्म किया जाए। दूसरी चीज़ हमने नज़रों को झुकाना पड़ा कि मर्द भी अपनी नज़रें झुकाएं, बेकार चीज़ें ना देखें, बेमकसद औरतों को भी ना देखें और इसी तरह से अपने जैसे मर्दों को भी ना देखें। फिर इसके बाद तीसरी चीज़ हमने इसमें जो भी देखी वो औरतों का अपनी जीनत को छुपाना था कि एक औरत जो अल्लाह पर ईमान रखती है वो जितना उसके अंदर ईमान और तकवा आता जाएगा उतना ही अपने हुसन को ना तो दूसरी औरतों के सामने खोलेगी और ना गैर महरमों के सामने। फिर इसके अंदर हमने कुछ साइड इश्यूज भी देखे जो औरतों से मुतल्लिक थे। आज के सबक में एक और सद ज़राए ज़िना और वो है कि शादियों को डिले ना करो। यानी आज के पूरे सबक का जो मेन थीम है वो क्या है कि मुस्लिम सोसाइटी में कोई शख्स बेजोड़ ना रहे। लफ्ज अय्यम आया उस पर हम बात कर लेंगे लेकिन यहां समझ लीजिए कुंवारे कब, जब वो बालिग हो जाए, प्यूबर्टी की एज आ जाए, लड़का हो या लड़की, जब दोनों जिम्मेदारियों को महसूस कर सकें और साथ ही साथ है कि जब उनको इस चीज़ की ज़रूरत महसूस हो कि हमारा ये फरीज़ा अदा हो जाए तो उनके निकाह कर देने चाहिए। फिर दूसरी चीज़ वो मर्द जिनकी बीवियों का इंतकाल हो जाए या जिनकी बीवियाँ उनको छोड़ जाएँ, और तीसरे वो औरतें जिनके शौहरों का इंतकाल हो जाए या फिर जिनके शौहर उनको छोड़ दें, यानी मुतल्लिका या बेवा। और इसी तरह मर्दों में भी कह सकते हैं कि वो मर्द जिसने अपनी बीवी को तलाक दी या फिर जिसकी बीवी फौत हो गई, जिसको अपनी ज़बान में हम रांड कहते हैं, तो ऐसे तमाम लोगों के निकाह भी कर दिए जाएं। सिर्फ इनके ही नहीं बल्कि किसी सोसाइटी के मुलाजिम, गुलाम, लौंडियाँ और कनीज़ें, हर एक की ये ख्वाहिश और हाजत अगर वक्त पे पूरी कर दी जाए तो उस माशरे से बदकारी और फहाशी का बहुत हद तक खात्मा हो सकता है। हम इस पे इंशाल्लाह तफसील से बात करेंगे कि आज के दौर में इस चीज़ को किस तरह ख़त्म किया जाए और क्या रुकावटें हैं कि जिसकी वजह से अमूमन ये रिश्ते हम जोड़ नहीं पाते। फिर अगली चीज़ हम देखेंगे, बावजूद ख्वाहिश और कोशिश के फिर भी किसी को जोड़ नहीं मिलता तो वो फिर अपने आप को कैसे बचाए नफ्स के और शैतान के हाथों में तरने वाला बनने से। तीसरी चीज़ हम आज का सबक जो बहुत ही ज़्यादा, यानी एक कहना चाहिए कि तकलीफ द टॉपिक है, और वो है प्रोस्टिट्यूशन, जिस्म फरोशी के बारे में इस्लाम क्या कहता है और तवायफों का किसी माशरे में क्या मुकाम है और उनको उस मुकाम तक पहुंचाने वाले गिरोह के साथ क्या मामला करना चाहिए। और आखिरी चीज़ हम देखेंगे मुकातबत, जैसे लियान की एक इस्तिलाह हमने पीछे पढ़ी थी तो आज के सबक में मुकातबत, यानी कोई गुलाम या लौंडी जो सारी ज़िंदगी लौंडी या गुलाम ना रहना चाहे तो वो एक ख़ास फिक्स रकम तय करके थोड़ा थोड़ा करके अपने मालिक को पे कर दे और जिस दिन वो रकम पूरी हो जाए उस दिन वो आज़ाद हो जाए। ये है मुकातबत, इसकी थोड़ी सी डिटेल्स हम देखेंगे ज़रूरत के तहत। अब हम चलते हैं आयतों पर। बहुत सिंपल सबक है लेकिन अगर इस पर अमल हो जाए तो किसी भी माशरे के अंदर खुशी और सुकून आ जाता है। देखते हैं तर्जमे को लेकर। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, आयत नंबर 32। वअन्किहुल अय्याम मिनकुम, और निकाह कर दो अपने अय्याम का, अय्यम लोगों का। लफ्ज़ अय्याम अय्यम की जमा है और अय्यम कहते हैं बेनिकाहे को। हमारी जुबान में इसको कुंवारा भी कह सकते हैं, रांड भी कह सकते हैं, छड़ा भी कह सकते हैं, हर जुबान के कुछ अल्फाज होते हैं ना। तो यहाँ मुराद है बग़ैर बीवी वाला शौहर और बग़ैर शौहर वाली बीवी, मुराद क्या है मर्द और औरत। अमूमन ये तीन किस्म के होंगे। नंबर एक, वो लड़के और लड़कियाँ जिनकी अभी शादियाँ ही नहीं हुई, कुंवारे के मानों में प्यूबर्टी की एज है, शादी की उम्र है। दूसरी, इसका इत्तलाक होगा वो मर्द जिनकी बीवियाँ शादी हुई थी लेकिन अब आज उनके पास नहीं है, और इसी तरह वो बीवियां जिनके शोहर आज उनके पास नहीं, जिसको आप कह सकते हैं कि शोहर दीदा और बीवी दीदा। दीदा कहते हैं देखने को, यानी एक तो वो है ना कि जिसने अभी देखा ही नहीं ये चीज, जिसने इसको टेस्ट नहीं किया, वो तो है ही, उसकी तो जरूरत है। और उसको तो बहुत सारे लोग महसूस भी करते हैं हमारे कल्चर में भी, लेकिन यहां बात हो रही है बेवा के निकाह सानी में, और वो बूढ़े जो हो सकते हैं 50 साल से ऊपर के हों, 60 के हों, ऐसी उम्र की हद जिस वक्त अमूमन हमारे यहाँ फिर कोई शादी करने लग जाए तो लोग कहते हैं इनको बुढ़ापे में क्या सूझी। अल्लाह हमें कहते हैं वान के होले यामा, तुम निकाह कर दो। किन के? अय्यामा, बेवा औरतों के। अब देखिएगा यहाँ लफ्ज है निकाह करवाओ, तुम करो, तो यहाँ अय्यामा को फिर औरतों में लिया जाएगा, मिनकुम, तुम में से, मतलब बेवा औरतों के निकाह कर दो तुम में से जो हैं। क्या एक चीज होगी, कैसे है इसको देख लेंगे। दूसरा किसका निकाह कर दो? वह सालेहीन मिन इबादिकुम, अपने नेक गुलामों के। पीछे भी बात हो गई, गुलामी उस दौर में आम थी, घर घर में गुलाम होते थे, क्योंकि जंगे बहुत थी, लड़ाइयों के बाद लोग कैदी बन के गुलामों या लोंडियों की सूरत में आते थे। इस्लाम ने ऐसे मैयर्स लिए कि आज अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया में गुलामी का वजूद नहीं है, लेकिन ये किसी वक्त दोबारा शुरू हो सकता है, किसी बड़ी जंग के नतीजे में दुश्मन से बच के आने वाले लोग जो हैं वो इस इस्तिलाह में आते हैं, तो इनके भी निकाह कर दो क्योंकि उनके भी जज्बात हैं। पीछे आपको याद है सूरत के आगाज में आपको बताया था कि पांच मकासद शरीय हैं, जिसमें एक इंसान के जज्बात की हिफाजत भी है, तो लिहाजा बगैर वजह के किसी मर्द को शादी के बगैर न रखो। और तीसरी इस्तिलाह, व इमाइकुम, इमाइकुम आमतुन की जमा है, और आमा कहते हैं लौंडी को, नाम भी है बड़ा खूबसूरत, आमतुल्लाह, अल्लाह की लौंडी। वो दुआ भी है ना कि अल्लाहुम्मा इन्नी अब्दुक वब्नु अब्दिक, तो उसमें क्या आता है, वब्नु अमतिक, अमती, मेरी माँ भी अल्लाह तेरी कनीज थी या बंदी थी। तो लिहाजा यहां मुराद है लौंडियां। पीछे हमने लौंडियों के बारे में बात की पांचवें पारे के आगाज में, और सूरत मोमिनून के पहले रकू में थोड़ी सी बात की थी कि लौंडी के साथ ताल्लुक रखने के मुख्तलिफ दर्जे होते थे। कुछ लोग तो अपनी लौंडी के साथ खुद ही अपना जिस्मानी ताल्लुक कायम कर लेते थे, और कुछ जिस्मानी ताल्लुक कायम नहीं करते थे, उनको भी कहीं नहीं जाने देते थे। कुछ ऐसे थे कि जो खुद तो नहीं लेकिन किसी और के गुलाम के साथ या किसी आजाद शख्स के साथ उसका निकाह कर देते थे। तो गोया कि अल्लाह ताला ने यहां इंसानों के सिन्फी जज्बात, उसके इमोशंस की बात की कि इनके निकाह कर दो। अब निकाह करने में तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन रुकावट क्या है, अमूमन लोगों के हाथ में आज भी वही है जो कल भी थी कि अफोर्ड नहीं कर सकते। अभी बेटा पढ़ रहा है, अभी बेटी पढ़ रही है, और अभी घर नहीं है, अभी गाड़ी नहीं, कोठी नहीं है। अल्लाह सुबहान तआला फरमाते हैं कि अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो ई यकून फुकरा, अगर वो तंगदस्त हैं भी, फकीर हैं लड़के, अभी जॉब पे नहीं लगे, काम धंधा नहीं है उनके पास, तो क्या हुआ, युग्नी ही मुल्लाहु मिन फदलिही, अल्लाह बेनियाज कर देगा उनको अपने फजल से। यानी ये ना फिक्र करो कि लड़के के पास तो मेहर देने के भी पैसे नहीं है, लड़की को खिलाएगा कहाँ, रखेगा किधर, निकाह कर दो, अल्लाह ताला अपनी रहमत से रिस्क बढ़ा देगा। वल्लाहु वासिउन अलीम, और अल्लाह ताला बहुत वुस्सत वाला और बहुत जानने वाला है। अब आप इस एक आयत को देखिए, तो सबसे पहला अगर इसमें हुक्म अय्यम को हम बेवा की सूरत में ले लीजिए, तो ये वो हुक्म है जिसके ऊपर आज हमारे माशरे में अमल क्यों नहीं होता, हिंदुआना रस्म और रिवाज के जेर असर होने की वजह से। कि एक औरत जिसका शौहर मर जाए, हिंदू कल्चर में अमूमन ऐसी औरत को सती कर दिया जाता है, क्योंकि बाद में जो उसको ताने मिलते हैं, दूसरों के सामने उसकी इंसल्ट होती है, तो रोज रोज मरने से बेहतर है कि एक औरत एक ही दिन में मर जाए। इसी से मुसलमानों में भी ये चीज आ गई कि बेवा औरत के साथ निकाह नहीं करना, और साथ ही साथ फिर ये भी हो जाता है कि वो शायद मनहूस हैं, अगर इनके नसीब में खुशी होती तो पहले ही क्यों मरता, दिस एंड दैट। ऐसे लोग सिर्फ अपना सर फोड़ते हैं, और तकदीर पर नाराजी रहने वालों का यही नसीब है कि वो जलते कुड़ते हुए ही दुनिया से चले जाएं। तो लिहाजा अल्लाह ताला हम सबको यहाँ निकाह की रग़बत दिलाते हैं। देखिए अगर आप देखें कि यहाँ खिताब किससे, अन के हु में, चूंकि हुक्म है ना तुम करो, तो पहली बात है कि कमारे लोगों के औलिया से, माँ बाप कह लीजिए या वली जो होते हैं, और दूसरी बात है सारे ही लोगों से। इस्लाम में निकाह की क्या हैसियत है? इस्लाम में निकाह इबादत है। आज माशरे ने इसको इस रंग का पेश किया कि जैसे शायद ये सिर्फ जज्बाती तस्कीन का नाम है, और इसको सिर्फ जिंसी जरूरत और जिस्मानी जरूरत समझा जाता है, हालांकि निकाह इंसान की जहनी जरूरत भी है, जिस्मानी जरूरत भी है, माशरती जरूरत भी है। एक अकेला दो ग्यारह, ये बिल्कुल टर्म फिट होती है शादीशुदा और गैर शादीशुदा पे। एक लड़की जब अपनी पीबीटी के पास पहुंचती है तो ना चाहते हुए भी उसके और उसके घर वालों और फिर बाद में दूसरे लोगों के जहनों में आ जाता है कि अब इसके साथ इसका कोई जुड़ा होना चाहिए। यही हालात लड़कों के होते हैं। तो लिहाजा इस्लाम कहता है कि जब किसी चीज की तलब हो तो तुम उसको आसान कर दो, उसमें मुश्किल ना करो। ये वो चीज है कि जिसको जितना आसान करोगे उतना ही बेहतर हो जाएगा। निकाह फर्ज भी है, मसनून भी है और हराम भी है। आप कहेंगे ये कैसे? फर्ज कब है? जब जरूरत महसूस हो और मां बाप ना करें, लड़का या लड़की किसी वजह से, और वो लड़का या लड़की किसी गुनाह में पड़ जाए, बदकारी हो, बेहयाई हो। इस पर रिवायात मौजूद हैं कि जिसकी बच्ची 12 साल की हो गई और उसने निकाह ना किया और वो किसी बुराई में पड़ गई तो गुनाह माँ बाप को होगा। ये बाइबल के नाते से बात मौजूद है कि हदीस में आती है बात। तो फर्ज कब है? कि बदकारी में पड़ने का अंदेशा हो। मसनून कब है? आम हालात में रिकमेंडेड है। वेरी गुड। हर नबी ने निकाह किया सिवाय ईसा अलैहिस्सलाम के, लेकिन रिवायत में आता है कि अब दोबारा जब वो दुनिया में आएंगे तो इंशाल्लाह वो निकाह करेंगे, अपनी तबई जिंदगी जियेंगे और उसके बाद उनका इंतकाल होगा। ठीक है। हराम कब है? जब पता चल जाए माँ बाप को दोनों में से किसी के भी कि हमारा लड़का शादी के काबिल नहीं है या हमारी लड़की में कोई ऐसा नक्स है, तो फिर इस बात को छुपा कर उसका निकाह कर दिया जाए तो ये हराम है। जाहरी बात है कि जो मकसद था वो तो पूरा ना हुआ। कितने दिन के लिए ये चलेगा निकाह? एक हफ्ते 10 दिन में बात खुल जाएगी, पता चल जाएगा, इसलिए इसको पसंद नहीं किया गया। इस्लाम के अंदर इन सारी चीजों को अल्लाह ताला ने बहुत ही खूबसूरत पेश किया। बुखारी और मुस्लिम की एक रिवायत जो हमारे यहाँ पहले शादी के कार्ड्स पे लिखी जाती थी अमूमन, क्या निकाह हो मिन सुन्नति, निकाह मेरी सुन्नत है, अल्लाह के नबी की सुन्नत है। एक और रिवायत में आता है हजरत अली से अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तीन कामों में देर ना करना। नंबर एक, फर्ज नमाज के अदा करने में जबकि वक्त शुरू हो जाए। दूसरी, जब कोई फौत हो जाए तो उसके जनाजा उठाने और कफन दफन में। और तीसरा, जब किसी का कोई साथी चला जाए तो उसके निकाह सानी में। इसी तरह से एक रिवायत में आता है कि तीन लोगों की मदद अल्लाह ताला जरूर करेगा। नंबर एक, निकाह करने वाला जो अपने आप को जिना से बचाना चाहे। फिर मुकातबत करने वाला गुलाम जो अदायगी की नियत करे, जो आज के सबक के आखिर में बात होगी। और तीसरा, जो अल्लाह के रास्ते में जिहाद करे। दुआ करें अल्लाह में मुजाहिद फी सबीलिल्लाह बना ले, हम दुनिया से अंधेरों को दूर करने वाले बन जाएं और इस तरह रोशनी फैल जाए घरों में हमारी वजह से, और इस रास्ते में फिर अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाए। इसी तरह नबी सल्लम की एक और रिवायत है, आपने वलियों को मुखातिब किया और फरमाया कि जब तुम्हारे पास रिश्ता आ जाए जिसके दीन और खुलुक को तुम पसंद करो तो वहां निकाह कर दो, अगर तुम नहीं करोगे तो वहां दुनिया में फसादुन कबीर होगा। ये सारी रिवायतें आप निकाह किताब निकाह जो इकबाल केलानी साहब की किताब है उसमें से खुद भी पूरी नोट कर सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह निकाह ए टू जी जो सेमिनार था उसके बिल्कुल शुरू के सेशन में ये सारी रिवायतें आपको ऑडियो फॉर्म में भी मिल जाएंगी। फिर इसी तरह से मुस्नद अहमद की एक रिवायत है, काब से पूछा गया क्या तुम्हारी बीवी है? कहा नहीं। कहा बांदी है? कहा वो भी नहीं है। तो फरमाया कि फराख माल हो, यानी यू कैन अफोर्ड? कहा हाँ। फरमाया फिर भी अगर तुम शादी नहीं करते तो तुम शैतान के भाई हो। मतलब क्या है कि फितने में खुद को डाल रहे हो। फिर जाहिर है कि जरूरत है तो फिर वो हलाल से तो नहीं हराम से पूरी होगी। निकाह होता क्या? मर्द और औरत का सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो औरत के वली और शौहर के बीच में बनता है, यानी बाप कह लीजिए या वली और उधर से लड़का। हम कहते हैं ना लड़के और लड़की का निकाह है, नहीं, निकाह होता है लड़की के बाप और लड़के के बीच में, जिसकी वजह से फिर बाप अपनी बेटी उसको देता है। क्योंकि आपने अक्सर अपने कल्चर में देखा होगा फुलां की बेटी से इतने हक मेहर के इवज, क्या तुम्हें निकाह मंजूर है? तो बाप बीच में होता है। हदीस में आता है जो लड़की अपना निकाह खुद कर ले तो वो जिना है। ला निकाहुन इल्ला बी वलीजुन, पीछे हम पांचवें पारे के पहले लेसन में हम बहुत तफसील से इस पे बात कर चुके थे। तो ये सब कुछ करना इंसान के लिए जरूरी है। मकासिद क्या है निकाह के? ये सिर्फ दुराई करा रही हूं वरना वो सबक आप दोबारा भी सुन सकते हैं अपना। पहली बात है हराम से बचाना खुद को, निगाह की हिफाजत करवाना और शर्मगाह की हिफाजत करना, फितरी जज्बात की तस्कीन करवाना, फिर इसी तरह से नस्ल पैदा करना। इस्लाम में बगैर शादी के बच्चे का तसव्वुर नहीं है। ये मिथ तो हो सकती है कोई वेस्टर्न स्टाइल की, لیکن مسلمانوں کے بچے شادی سے بغیر نہیں ہوتے. آج آپ دیکھ لیجئے جب لوگ ایک دوسرے کو اپنے آپ کو دین کے نام پہ مجبور سمجھتے ہیں تو آج اس چیز کو بھی رکھ لیا. پھر اسی طرح سے مودت اور رحمت, دن بدن انسان کمزور ہوتا ہے اور انسان ایک زندہ چیز ہے, کبھی صحت مند کبھی بیمار, کبھی خوش کبھی پریشان. ایک دوسرے کے فطری جذبات کے ساتھ ساتھ دوستی, مودت, تنہائی ختم ہو. پھر اس نکاح کے مقاصد میں یہ بھی ہے کہ اس سوسائٹی میں ایک نیا گھرانہ وجود میں آئے, ایک نئی فیملی جہاں آئندہ نسل کی تربیت کا انتظام ہو, امن و امان قائم ہو, دین کی حفاظت ہو. عموماً شادیوں کے بیچ میں رکاوٹیں کیا ہیں آپ کو پتا؟ سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے؟ پیرنٹس. فی زمانہ, یہ ایک میں نے پچھلی کلاسز میں بھی کہیں کوٹ کروایا تھا, امریکہ میں کچھ بردرز ہیں جنہوں نے یہ سارے فگرز جمع کرائے تھے کہ عموماً جوان ہونے کے باوجود لڑکے اور لڑکیوں کی شادیاں کیوں نہیں ہوتی. تو اس میں ایک ایشو ایجوکیشن تھا, پڑھ رہے ہیں, پھر جاب تھا, لڑکے کو جاب نہیں ملی, پھر تیسرا جی یہ ہے کہ وہ باہر گیم ہے, وہ بھی ویزا نہیں لگا, ڈاکیومنٹس ہیں. پھر اس میں ایک بہت بڑی وجہ ماں باپ تھے. کیا پہلے رشتوں کو پسند کوئی نہیں آتا, اور جب پسند آ جائے تو رسموں کے بیچ میں, اب جہیز جمع ہو رہا ہے, ابھی یہ ذمہ داری پوری ہو, لڑکے کا گھر بن جائے, اس کی گاڑی ہو جائے. اتنی شرائط باندھنے والوں کی بھی بچیاں اتنی خوش نہیں رہتی جتنی ہولے بھا پہلے دور میں جو لوگ دینداری کے نام پہ نکاح کرتے تھے اور ان کی بچیاں خوش رہتی تھیں. تو لہٰذا نکاح کو آسان ہونا چاہیے. حدیث میں آتا ہے کہ وہ عورت اپنے مرد کے لیے بہت بابرکت ہے جس کا حصول آسان ہو. ابھی لاسٹ ویکینڈ ہم ایک ولیمے پہ مدعو تھے, تو بعد میں چھوٹا سا ایک درس ہوا اور پھر کچھ لوگ اپنی شیئرنگ کر رہے تھے, تو اس میں سے ایک کوئی ینگ بردر تھے جو دوست تھے شاید لڑکے کے, تو اس نے باقاعدہ یہ بات مائک پہ کہی کہ میں آج کے موقع کو بنیاد بنا کر پیرنٹس سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خدا کے لیے اپنے بچوں کی شادیوں کو آسان کرے. کئی مرد ہیں اور کئی لڑکیاں ہیں جو شادی کرنا چاہتی ہیں اور ان کو کیا لگے, ان کو تو شادی چاہیے. یہ اوپر کے سارے جو چونچلے ہیں نا, یہ ماں باپ کے ہوتے ہیں, کبھی عزت کے نام پہ, کبھی لمبے چوڑے کھانے, اب ہال نہیں بک ہو رہے, یہ نہیں ہو رہے, اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کہاں تک لے جایا جاتا ہے. تو لہٰذا اس ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے شادی کو آسان کر دینا چاہیے. اب ہوتا کیا ہے کہ شادی جب ہو جاتی ہے اس سے پہلے غربت ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ جو بات کہی نا کہ یغنیہم اللہ من فضلہ, یہ کیا ہے ذرا اس کو بھی سمجھ لیجیے. کبھی آپ نے بارش ہوتی ہوئی دیکھی ہوگی, تھوڑی تھوڑی بارش ہوتی ہے نا, جیسے بارش کی جو پھوہار ہے ایک جگہ تھوڑی سی پڑی, پھر تھوڑی دور آگے جا کے پڑی, آپ وہ دونوں بدلیوں کو ایک جگہ جمع کر دیں تو وہ دونوں کی بارش ایک زمین کے ٹکڑے پہ پڑے گی تو زیادہ ہوگی. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جس کو بھی پیدا کیا ساتھ ہی ساتھ اس کا نصیب بھی پیدا کیا. ہر بچہ رزق لے کر آتا ہے, دو ہاتھ ہوتے ہیں, اس کے دماغ ہوتا ہے. اب ایک لڑکی ہے, وہ اپنے ماں باپ کے گھر میں تھی, اس کا نصیب ادھر تھا, لڑکا جو ہے اس کا نصیب ادھر تھا. اب وہ دونوں جب ایک چھت کے نیچے ہو گئے تو ڈبل ہو گیا نا نصیب. تاریخ گواہ ہے کہ شادی ہوئی غربت تھی, اور اس کے دو چار سال کے بعد وہی مرد شہر کے امیر ترین لوگوں میں شامل ہو گئے. آپ کروڑ پتی کو بھی رشتہ دیں گے نا, اگر آپ کے نصیب میں نہیں ہے تو سال دو سال میں وہ بچی ہینڈ ٹو موت ہوگی. ایسی مثالیں اگر آپ نام لینا چاہیں تو 20 مثالیں آپ کو دی جا سکتی ہیں, کروڑ پتی لوگ. اور ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ گھر میں ایک وقت کا کھانا نہیں ہو, یہ ریئلٹی ہے, آپ سب یہ جانتے ہوں گے. ہم سب اسی دنیا میں رہتے ہیں کہ تل کل ایام ندا ولوحا بین الناس, اور اس کو اپوزٹ بھی ہے. سیدھے سادے محنتی لڑکے کو ماں باپ رشتہ دے دیتے تھے جو بالکل دین کے ابتدائی اپنی زندگی کے کیریئر کے آغاز میں ہوتا ہے, کچھ سالوں میں محنت کی آنیسٹی تھی, وہ اپنے سسر سے بھی زیادہ امیر ہو جاتا ہے. خرابی پتہ کہاں پیدا ہوتی ہے, جہاں ہم یہ چاہتے ہیں کہ شادی جس لڑکے سے کریں عمر تو اس کی تھوڑی ہو, بڑا معصوم سا بچہ ہو. لڑکیاں بھی یہ کہتی ہیں کہ اگر میں 20 کی ہوں تو وہ 21 کا ہو, 22 کا, دیٹس اٹ. اور اس مرد کی حیثیت اور اس کی دولت کو تقابل کرتے ہیں اپنے باپ کے ساتھ. میرے ابو کے پاس کیا ہے؟ بھئی آپ کے ابو اب اپنے کیریئر کے اختتام پہ ہیں, آپ کا ہونے والا شوہر اپنے آغاز پہ. فرق ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ آپ میں سے کسی کا اگر ایکسپیرینس ہو جو ڈاکٹرز کی بیوی ہیں, خاص طور پہ یہ ایک پروفیشن ایسا آتا ہے کہ شروع میں اتنا حالات خراب ہوتے ہیں. ہماری ایک بڑی پیاری ساتھی ہیں کہیں جہاں پہلی کلاسز ہوتی تھی, یعنی کہہ سکتے ہیں کہ شہر کے امیر ترین لوگوں میں وہ شامل ہوتے ہیں جہاں وہ رہتی تھیں اور جو بھی ہیں. हम कभी सोच भी नहीं सकते कि वो कम होंगे, और हर चीज में दीन में वो आगे होते थे। लेकिन वो जब बैठती थी तो सुनाती थी कि जब मेरी शादी, उस शौहर डॉक्टर थे पर हाउस जॉब थी, फिर वो कहाँ कहाँ उन्होंने धक्के खाए। वो यकीन करे सुनाती थी कि इतने थोड़े पैसे मेरे शौहर को हाउस जॉब के दौरान मिलते थे कि जोड़ जोड़ के जमा करते थे, कि जब पहली बच्ची कहती है पैदा हुई तो फिक्र पड़ गई कि इसका दूध पानी कहाँ से आएगा। तो हम हैरान होते थे कि ये तुम कह रही हो, लेकिन ऐसा हुआ। वो वक्त नहीं रहा, वक्त के साथ बदलता है, क्योंकि कारोबार में और जॉब में बहुत बड़ा फर्क होता है। इससे फर्क क्या पड़ता है, आप किसी करोड़पति के साथ शादी कर दें, नजर पाक नहीं है, दिल पाक नहीं है, जुबान का गंदा है, मिजाज का तेज है, आपसे ज्यादा उसको दूसरी चीजों में दिलचस्पी है, क्या आप दौलत के साथ सो सकती हैं? मोटे मोटे आंसू होते हैं उन औरतों की आंखों में, इतनी मोटी मोटी चूड़ियां और बुंदे और हार और उंगलियों में अंगूठियां होती हैं, लेकिन वो कहती हैं कि हम रो के सोते हैं क्योंकि हमारा शौहर हमें तवज्जो नहीं देता। तो मिल जाए तो बड़ी अच्छी बात है। अक्सर माँ बाप अपनी बेटियों के रिश्ते क्यों नहीं कर पाते, क्या ऐसा हो सकता है कि कभी कोई रिश्ता आए ही नहीं? आप बैठ के सोचें, देखिए कि जब माँ बाप भी खूब से खूब दर की तलाश में जाते हैं ना, तो फिर वक्त गुजर जाता है बाज़ूकात, क्या बेटी के रिश्ते नहीं आते? मेरा ख्याल है वो कहते हैं जिस घर में बेरी हो वहां पत्थर आते हैं, और जहां लड़की हो वहां रिश्ते आते हैं। अपना मियार हल्का रखें। अमूमन शुरू में तो लोगों को इतना मान होता है, हमने इतना पढ़ाया, हमारी बच्ची इतनी खूबसूरत है, हमारी अकेली बच्ची है, वो हर रिश्ते को यूं तू तू करके पीछे कर देते हैं। और इसी तरह लड़के की माएँ कहती हैं अभी तो इसको पढ़ाना है। अब आप सोचिए, मिसाल देती हूँ आपको, सिर्फ एक फी जमाना बात है। जैसे अमूमन आज के दौर में जब लड़के अपनी तालीम से फारिग होकर जॉब पे लगते हैं ना, तो 25 से 27 साल की उनकी उम्र हो चुकी होती है, राइट और रॉन्ग? 27 साल का एक लड़का, आज का ये मुआशरा जिसमें मैं और आप जी रहे हैं, लड़का सच बताएं बालिग कब हो जाता है? एक तो ना उसको बातें पता लग गई, वो तो आपकी सेक्स एजुकेशन नहीं दे दी 7-8 साल की उम्र में, 14 से 15 साल की उम्र में 100% वो शादी के लिए तैयार है। और अल्लाह ना करे अगर खराब माहौल है तो गर्ल फ्रेंडशिप तो इससे पहले की भी होगी। 27 साल तक, चले हम मुहतात अंदाजा लगा लें, 17 से उसको यंग करें, 27, 10 साल आपके बेटे ने किस तकलीफ में गुजारे। और वो जज्बे जो कच्चे कच्चे जज्बे होते हैं जो शुरू में आते हैं, ठीक होते हैं। पहले दौर में क्या था, लड़का 18 साल का, लड़की 16 की है। अच्छा जी, रहते कि अब्बा किधर है जी, अब्बा कैसे दुकान पे बैठता है। लड़की की शादी हो गई, अब्बा जी को गुस्सा आ गया, उसने शादीशुदा बेटे को भी लगा दी, और हर महीने उसने अब्बा जी पैसे तो दे दें, अब्बा जी जेब तो दे दें खर्च। अब होता क्या था, छोटी उम्र में जब शादियां होती थी ना, तो लड़की देखती थी अपने शौहर को अपने ससुर से डांट खाता, वो लड़की के दिल में किसकी बड़ाई होगी, ससुर की होगी। पहले लड़कियां क्यों जुड़ जाती थी ससुराल के अंदर, सास की भी खिदमत ससुर की, क्योंकि उनको पता हर महीने अब्बा जी से पैसे आने, तो मेरे मियां ने मुझे कुछ पॉकेट मनी देना। ला मुहाला बच्चियां ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में खुश रहती थी। और अगर किसी लड़के ने या शौहर ने बीवी के साथ जरा ऊंची बात करनी, तो लड़की जो है वो ससुराल की खिदमत करके उनके दिल में जा चुकी होती थी, तो कहते थे खबरदार इसको हाथ लगाया तो तुम्हें भी निकाल दूंगा घर से, इसको रख लूंगा। कितना सिक्योर फीलिंग आती है। आज देखिए, अमूमन आप अगर बेटी के बाप हैं, मैंने इस पे छोटे छोटे वो दिए हुए सेशन, उसका एक टॉपिक ही मुझे याद आ गया कि अगर आपकी बेटी का रिश्ता है, इसी तरह एक छोटा सा सेशन था किसी मौके पे कि अगर आप बेटी के बाप हैं, इस तरह बाप बेटे के, तो वो छोटे छोटे मैसेजेस होते हैं, अपने ऊपर लेके सोचें कि अगर आप बेटी के बाप हैं या बाप नहीं है, तो ऑफकोर्स अब आप तो माँ ही हैं जो सुन रही हैं, आप ये बताइए कि जब ये आपके जहन में आता है कि मैं अपनी बेटी की शादी कहाँ करूँ, तो हम क्या कहते हैं कि लड़का अपने कदमों पे खड़ा हो। कदमों पे तो वो गरीब अल्लाह का बंदा साल 1.25 साल का खड़ा हो गया था। अक्सर माए कहती है अभी अपने कदमों पे नहीं खड़ा हुआ। ये बड़ा अजीब सा मामला है हमारे यहाँ। अब जब एक लड़का 100% मिच्योर है, देखिए 17 साल और 27 साल के बीच में क्या उसकी सोच नहीं पुख्ता हुई, उसके आइडियल नहीं पुख्ता हो गए, उसकी ये कैसे हो सकता है कि पढ़ने के दौरान भी उसको कोई अच्छी लड़की ना लगी हो, फिर जॉब के दौरान, हाउस जॉब के दौरान, फिर जहां काम, 4-5 लड़कियां यकीन करें उसके दिल में आई होंगी, ये अलग बात है शराफत की वजह से उसने बात नहीं बढ़ाई। आपकी बेटी जो उसके घर आ रही है ना, वो छठी लड़की होगी जो उसकी सोचों में आई। मैं नहीं कहती उसका किरदार खराब है, मुश्किल क्या पड़ी, आपने 10 साल में पहले उस गरीब को आइडियलाइज करवा के दौड़ा, फिर आप बेटी देते हैं। सिंपल तरीके से शादियां कर दें, रात जाते जो रिश्ते हो जाते हैं ना, यकीन करें उसमें बड़ी बरकत है। और जो पुंजिन करते हैं ना, अल्लाह ना करे उतने ही घर में बाद में मसले उठते हैं। अल्लाह के नबी सल्लम के पास एक मौके पे एक शख्स आए, जलबीब उनका नाम आता है, कभी जलबीब है, और थोड़े से प्रोनाउंसिएशन से हदीसों में फर्क है। काले रंग के थे, हबशी परदेसी थे, मदीना के नेटिव नहीं थे। اور دولت بھی کوئی نہیں اور غلام بھی تھے. سمپل اس دور کی خوبصورتی دیکھیے. مسجد نبی میں اللہ کے نبی صرف نماز کے لیے نہیں جاتے تھے, فٹافٹ اور بھاگ کے نہیں آتے تھے, بعد میں بیٹھتے تھے, فجر کے بعد نشست ہوتی تھی, آپس میں بات چیت ہوتی تھی, دکھ سکھ ہوتا تھا. آپ پوچھتے ہیں, خیر اس نے کہا اللہ کے نبی نکاح کی حاجت ہے. اتنا خوبصورت معاشرہ تھا کہ کوئی مرد اگر نکاح کی حاجت پاتا ہے نبی کے پاس. ایون روایتوں میں آتا ہے عورتیں بھی, کیونکہ جب ریولیوشنری دور ہوتا ہے نا, چینجز آتی ہیں سوسائٹی میں, تو پھر کوئی مسلمان ہو گئی ہے تو ماں باپ مسلمان نہیں ہے, اور اسی طرح کی کہانی. بعض عورتیں تک آ کے کہتی تھیں اللہ کے نبی ہمارے معاملے میں اب جو فیصلہ کریں ہم تیار ہیں, اس طرح کے حالات ہیں. خیر اس نے کہا کہ مجھے نکاح کی حاجت ہے. کہا اچھا, وہ فلاں کہہ رہے ادھر چلے جاؤ اور ان کو جا کے کہہ دینا کہ نبی نے بھیجا ہے مجھے آپ کے پاس آپ کی بیٹی کے لیے. یہ گیا, بیل کی جو بھی بات ہوئی ہوگی, خیر بیٹھے بات کی, جی میں اس طرح آیا ہوں, مجھے اللہ کے نبی نے بھیجا ہے تو آپ کی بیٹی کے لیے رشتہ مانگنا ہے. وہ پہلا پھیرے کدھر گئے, جوتیاں پٹکنا کدھر گئیں, شکل دیکھنا, چائے پیتے ہیں, یہ تو کھانے کھانے کا بھی ایک بہانہ ہو گیا نا, چلو لڑکی دیکھنے چلتے ہیں, خوب دانتیں پکتی ہیں. ظلم کی حد ہے, گائے بھینسوں کی طرح لڑکیوں کو سجا کے ٹرے ہاتھ میں پکڑا کے کانپتے ہاتھوں سے, پھر ٹرے گرے گا, پھر لڑکا پکڑے گا, پھر ایک میوزک بجے گا, پھر اس کے بعد گھن 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 گھن. کیا کر دیا ہم نے اپنی نسلوں کو, یقین کریں زندگی فلم اسٹوری نہیں ہے. جو ریئل لو ہے نا وہ شادی کے بعد ہے. اللہ کے نبی نے کہا جو محبت آج دو اجنبیوں کے بیچ میں نکاح سے بڑھ کے کوئی چیز محبت نہیں ڈالتی, اور یقین کریں یہ سچ ہے. کس زمین کے ٹکڑے پہ کوئی پلتا ہے, نہ رنگ جانتے ہیں, نہ شکل, نہ کوئی ذات, نہ برادری, اور جب محبت ہوتی ہے تو آپ کیا محسوس کرتی ہیں اپنے شوہر کے بارے میں. ہر ایک اچھی صاف ستھری عورت جانتی ہے, اور میرے خیال مرد بھی یہی سوچتے ہیں, الا یہ کہ تھوڑی بہت وہ روپ ڈالنے کے لیے چیخ چوک لیتے ہیں, لیکن اندر سے وہ چاہتے یہی تھے کہ آپ سے شادی ہو, کیونکہ آپ ہی برداشت کر سکتی ہیں ایسے مرد کو. ہر مرد اندر سے میرے خیال خوش ہی ہوتا ہے, اور شروع میں نہ پانچ چھ سال بعد ہو جاتا ہے, کوئی دس سال بعد خوش ہوتا ہے. اب شاید ہم نے فکشن میں کیا دیکھا, پوری فلم سٹوری کس پہ چلتی ہے, لو یا رومانس بیفور میرج. اور اکثر فلمیں کہاں ختم ہوتی ہیں, یا شادی ہوگی, نہیں نہیں اب بس شادی ہوگی, یعنی اب ختم. وہ کہتا نا کہ ویڈ لاک از ڈیڈ لاک, بس شادی ہوئے مر جاؤ ختم. یا پھر شادی نہیں ہوئی تو وہ کہتے اچھا ساتھ جیے نہیں تو ساتھ مریں گے, ادھر گرا پڑا خودکشی کر کے, ادھر دونوں کی روحیں نکلی اوپر, دونوں ملی دل بن گیا, کہتے ہیں یہاں نہیں تو آگے ملیں گے. جی نہیں, آپ خودکشی کرتے رہیں گے, روز یہی کام کرتے ہوئے آپ برزخ میں رہیں گے. کیا سوسائٹی ہے ہماری, اسلام کہتا ہے نہیں آسان رکھو. خیر جب ماں باپ نے سنا کہ یہ بچہ ہے, اور اب دیکھیں تو کیا دیکھیں, جس کو ہم اپنی زبان میں کہہ سکتے ہیں کہ بات ہے بھی تو کیا, نہ دولت, نہ شکل, نہ کوئی خاندان, نہ برادری. قریب تھا کہ ماں باپ انکار کر دیں, لیکن بچی اندر سن رہی تھی, اور وہ بچیاں بھی میرا خیال ہے کہ ان کے معیار اچھے تھے. پھر اس نے کہا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ قریشی نہیں ہے, تو یہ تو دیکھیں کہ جس نے اس کو بھیجا وہ قریشی ہے, کہ دیکھیں رشتہ بھیجا کس نے آپ کے گھر, اور اگر یہ خوبصورت نہیں ہے تو جنہوں نے بھیجا ہے وہ تو بدر منیر ہے. ان کے پاس دولت نہیں ہے تو جس نے میرا رشتہ بھیجا ہے وہ دولت مند انسان ہے, دنیا کی بادشاہی ان کے پاس ہے, آپ میرا نکاح ادھر کر دیں میں تیار ہوں. کہا اچھا بعد میں ہمیں تو نہیں کہو گی. نہیں نہیں کہوں گی. نکاح ہو گیا, اللہ کے حکم سے وہ نکاح ہوتا ہے. جلبیب نے مدینہ میں رہنا شروع کر دیا, کہتے ہیں کہ اس نے کوئی کام شروع کیا اور اللہ نے اتنی اس میں برکت دی, ایک سال کے اندر اندر مدینہ کے جس کو آج کی زبان میں کہیں کہ کروڑ پتی لوگوں میں جلبیب کا نام آ گیا, اور اس شہر میں ان دونوں کی محبت ایسے مشہور تھی, اتنا پیار ڈال دیا اللہ نے شوہر بیوی میں. کیا رنگ سے کوئی محبت ہوتی ہے, شکل سے ہوتی ہے, فیچر سے ہوتی ہے؟ یہ موٹی آنکھیں پلکیں یہ صرف شادی سے پہلے کی باتیں ہیں, اور فلموں اور ڈراموں میں اتنی محبت تھی کہ کیوپڈ کپل کے نام سے مشہور ہو گیا وہ جوڑا, کیونکہ اللہ محبت ڈالتا ہے. یہ دعا کریں کہ اللہ نے آپ کی بیٹیوں کے لیے خیر لکھی ہو, اور جب آپ اپنی بیٹیوں کو حیا کے زیور اور خدمت گاری اور عاجزی اور اسمائلی اور اچھی فگرز دے کے بھیجتے ہیں, بڑے سے بڑے کٹھور کے ساتھ بھی واسطہ پڑ جائے, تھوڑے سے مجاہدے کے بعد دل ٹھیک ہو جاتے ہیں. اس لیے بہت نہیں پنپنا چاہیے. اور اس کا اپوزٹ دیکھ لیں, اگر آپ لڑکے کی ماں ہیں ماشاءاللہ, وہ پری کہاں سے لاؤں جسے تیری دلہن بناؤں. اللہ کہتا ہے من انفسکم ازواجن, تمہارے لیے میں نے تمہاری ہم جنس بنائی, یعنی مرد تو عورت ملے گی. ہم پہلے ہی خلط ہے, ہم کہتے ہیں نہیں پری چاہیے. پریاں دیکھیے کبھی آپ نے؟ سوچیے کیا خواب دیتے ہیں, تیری دلہن دیکھوں ڈھونڈوں, پھر فلمیں, پھر گانے, پھر بھابھی دیور کے لیے ڈھونڈتی ہے. ہم نے یہی کہانیوں میں کھو کھو کر زندگیاں ضائع کر دی. آج آپ کو تمہارے کلچر کا میرا خیال ہے کہ مور دین 50% وقت सिर्फ ये धुरले रिश्ते ढूंढने, या पहला फेरा, अब जोड़ा देना, अब मंगनी आ गई, बरात आ गई, ये करो, अब शादी के जोड़े, अब डेट डालो, अब तारीख डालो, आप सब भी तो इन चीजों से वाकिफ होंगे ना। शादी तो अभी बहुत दूर है, अभी तो उसके पिछले सगन नहीं पूरे हो रहे, पहले ही माँ बाप की जेब खाली हो जाती है। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि आसान काम करो। वल्लाहु वासिउन अलीम, देखिए अल्लाह की सिफत, ये गरीब है, अल्लाह तो वसी है, वसतों वाला है, अल्लाह ने उसके लिए रखा है। और आप अपने 20 25 30 साल, जिसकी जितनी भी देर गुजरी है शादी को, उसको सोचें, क्या आपके शौहर और आपकी जिंदगी एक ही नहज पे चली? कितने अप्स एंड डाउन नहीं आए? कभी आपके शौहर माशाल्लाह करोड़पति थे, फिर एक ऐसा बीच में प्रॉब्लम आ गया, 4 5 साल कारोबार चला गया, हो सकता है कर्जों में चले गए, अल्लाह ने फिर सुन ली। ये जिग जैग चलती रहती है, ये ग्राफ है, लेकिन असल चीज जिस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। और मैं कहूंगी कि जिस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए रिश्ते करते वक्त दोनों साइड से, उस पे आज हम गौर भी नहीं करते, और वो है दीन। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि 5 बातों की वजह से अमूमन किसी औरत से निकाह किया जाता है। 4 बातें भी आती हैं, 5 भी आती हैं। नंबर 1, ली जमालीहा, खूबसूरती, ब्यूटी। ली मालीहा, ब्यूटी के साथ साथ माल भी है। हसबीहा, उसका हसब अच्छा है, उसका नसब अच्छा है। और ली दीनीहा, उसका दीन अच्छा है। फरमाया कि तू दीन वाली के साथ कामयाब हो जा। अब आपको मैं सारी बात को इकट्ठा कर दूं, सम अप कर लेते हैं सारे मामले को। कोई माँ बाप ये नहीं है जो ये चाहे कि हमारी बेटी जो है वो जहां जाए वो जूतियां पटखें, खाए ना पिए ना फाके हो, कोई नहीं चाहता। ना बेटी के लिए आप चाहते हैं ना बेटे के लिए, और ये नेचुरल है। पूरी दुआ करें, जितनी आप पूंछीन करें ना उतनी दुआएं दें अपने बच्चों को। आपको चारों पांचों चीजें मिल जाती हैं, सोने पे सुहागा, अच्छी खूबसूरत भी लड़की है, खानदानी भी है, दौलत भी अच्छी है उसकी, दीन भी है, तो ये तो नूर नला नूर है, इट्स ओके। ये भी नहीं कह सकते कि अब लेनी नहीं है ऐसी चीजें क्योंकि ये हमें अच्छी नहीं लगती, हमें तो सिर्फ दीन चाहिए, नहीं ऐसा भी नहीं। लेकिन आज बैठ के एक चीज को प्रायोरिटाइज करें, पांचों में से छोड़ना पड़े तो क्या छोड़ सकती हूँ? खूबसूरती, इट्स ओके, सारी खूबसूरत हो जाते हैं बाद में, कोई बड़ी बात नहीं। माल नसीब की बात है, खानदानी जो मेरे खानदान में जुड़ गया वो मेरा खानदान हो गया, हाँ दीन इस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं है। आप देखें रिश्ते लोग करते हैं, पूछें लड़का नमाज पढ़ता, ये तो हमने पूछा ही नहीं, भाई पूछ लेते, नहीं फिर बदमजगी पड़ती है, नहीं फिर लोग माइंड करते हैं। अच्छा ये बताएं कि लड़का काम क्या करता है, ये हमने नहीं पूछा, भाई जॉब क्या उसकी, नहीं ये नहीं पूछते। अच्छा ये बताएं कि उनका अकीदा ठीक है, कोई उनके शिर्क तो नहीं, नहीं ये तो नहीं, ठीक हो जाएगा, लड़की ठीक कर रहे, वो समझे मेरी लड़की बड़ी बहादुर है, बिगड़े हुए 10 20 15 साल के लड़के को हमारी लड़की देखना है कुछ दिनों में यूं ठीक कर लेगी, और वो लड़कियों को भुगतना पड़ता है। अक्सर मैंने देखा है माँ बाप के गलत फैसले भुगतती लड़कियां, और अच्छी बच्चियां माँ बाप को कभी नहीं बताती कि आपने हमारा कहाँ कर दिया, वो खुद ही अल्लाह से पूछती हैं, अल्लाह अब क्या करूं, कर तो दिया माँ बाप ने, हमने इसको भुगतना है। लेकिन कभी जैसे पीछे पढ़ चुके हैं, अल खबीसातुल खबीसुन और अतय्यबातुल तय्यिबुन, तो रिश्ता देखते वक्त दीन पे कॉम्प्रोमाइज ना करें, जितना ज्यादा आप इस पे देखेंगे उतना फायदा होगा। एक और बात इस सिलसिले में हमारे कानों में पड़ती है लोगों की तरफ से, और वो क्या, वो कहते हैं जी हमने तो दीन देख के दिया था, वो तो धोखेबाज निकले। फिर क्या दीन देखा था आपने? वो उनके अब्बा जो है ना वो मस्जिद में बहुत खिदमत करते हैं, तो हमने वो मस्जिद के नमाजी के बेटे से शादी कर दी। भाई उस बेटे को भी कभी आपने देखा था मस्जिद में? नहीं, अब्बा जो इतने हाजी साहब का बेटा, वो मेरी दर्स वाली बहन है, उसकी बेटी से शादी कर दी। ये गलती कभी ना करें, ये बेसिक रूल्स बना लें, माँ बाप को देखकर कभी निकाह ना करें, रिश्ते ना करें। पहले वो प्रोडक्ट देखें कि ये लिया क्या आपने, सब चीजों को निकाल दें, किसका बेटा किसकी बेटी, किसने कहा किधर कहा, सिर्फ ये देखें जो चीज आज आपके हाथ में आ रही है वो क्या चीज है। अच्छा लड़का है, आप देखिए कि इब्राहिम का बाप कौन था, अगर माँ बाप को देखा जाता तो इब्राहिम के बाप कोई अच्छा बाप नहीं था। और हजरत नूह कौन थे, बेहतरीन बाप, तो उनका बेटा का नाम क्या था? गलतियां लग जाती हैं, कभी माँ बाप को ना देखे, फर्क पड़ता है इसका, लेकिन असल शख्सियत वो होती है जिसके साथ आपका मामला होने वाला है। फिर उसके बाद आप देखिए कि एक और चीज इसमें, ये आप चाहें तो कुछ सवाल जहन में है तो वो भी लिख के दे दें ताकि बात आपकी आ जाए। इस एक लफ्ज में यानी कि इन यकून फकरा युग्निहिमुल्लाह मिन फदलिही में, अगर आप देखें तो इशारतन अल्लाह ताला ने मर्द की जिम्मेदारियों का भी एहसास दिलाया है। इस्लाम में शादी पे खर्चा अव्वल तो आता ही कोई नहीं है, और अगर आता है तो मर्द उसका जिम्मेदार होता है। एक ही खर्चा है सिर्फ शादी का, और वो वलीमा है। औलिम बिशातिन, ولیمہ کرو چاہے ایک بکری ذبح کرو. حضرت عبد الرحمن بن عوف کو اللہ کے نبی نے کہا. اور اللہ کے نبی کی جتنی بھی شادیاں ہیں اس میں سب سے بڑا ولیمہ وہ تھا زینب کا جس میں بکری ذبح کی گئی. شادیوں کو آسان کریں. آپ سب اگر آگے جا کے زندگی میں بھاگنا چاہتے ہیں نا اللہ کے راستوں میں تو زندگی کو آسان کریں. ان فریضوں سے اپنے کام کریں اور اللہ آسان کرے گا. اور ابھی یہ جو انہوں نے بتایا کہ بیٹے کو جاب مل گئی یہ ہوگا, اب یہ بتائیں کہ جو شادی شدہ مرد بیچارے جاب لیس ہیں ان کے لیے کیا حکم ہے؟ اب یہ آپ کہہ رہے ہیں میں نہیں کہہ رہی. ویسے یہ روایتوں میں یہ بات ملتی ہے کہ جب کبھی حالات اٹکے ہوں تو کچھ چینج زندگی میں پیدا کرو. کس میں ضرورت ہے اپنے ہسبینڈ کی دوسری شادی کرا سکے. پھر آپ دیکھیں کہ ایک تو دو کا جوڑ مل جاتا ہے نا, ایک دو کچھ اور بھی فائدے ہوتے ہیں. کیسے رسک کیسے بڑھتا ہے, ایک تھوڑا سا آپ کو اور اینگل بھی دینا چاہتی ہیں. اور وہ کہ بعض دفعہ مرد جب اکیلے ہوتے ہیں نا تو پیسے بیکار ضائع بہت کرتے ہیں, فضول خرچ ہوتے ہیں. ایک ایک ٹی شرٹ اتنی مہنگی لے آئے, کھانا باہر کھاتے ہیں. اب بیوی گھر میں آئی وہ بیچاری, اگر سلیقے والی بیوی آپ لے آئے تو وہ تو پھر سمیٹ سمیٹ کے آپ کی چیزیں رکھے گی, آپ کے کپڑے جوڑے گی, گھر میں دھوئے گی, کھانا گھر پکے گا. پھر بعض دفعہ بیویاں شوہروں کے کاموں میں ہاتھ بھی بٹا دیتی ہیں. پھر ایک اور چیز کہ جب جوانی کے اندر ایک تو جسم کے جذبے مضبوط ہیں, اوپر سے حالات تنگ ہیں, تو مرد ڈپریس رہتے ہیں, بعض دفعہ وہ مرجھائے ہوئے ہو جاتے ہیں. بیوی کے ساتھ جب بیٹھے بات کی, ہنسے بولے کیا رہا آج کا دن کیسا رہا, تو خوش رہتے ہیں, تو اس سے ان کی ایفیشنسیاں بھی بڑھ جاتی ہیں. اور اس طرح سے آپ دیکھیے کہ وقت کے ساتھ یہ ساری چیزیں آگے چلتی جاتی ہیں. اگر خوشی کا اختیار دولت اور مال پہ ہوتا تو اللہ کے نبی کی بیویاں تو کبھی ان کے ساتھ خوش نہ رہتی. تو بس یہ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اس پہ عمل کی توفیق دے. افسوس کی بات یہ کہ آج ہمارے ہاں بعض لوگوں کی زندگی کا مقصد ہی جس کو آپ کہنا چاہیے کہ پریسٹیجیس شادیاں کرنا ہو گیا. اور ایک معروف جملہ, اور کس لیے کماتے ہیں اور کون سے موقع ہوتے ہیں خرچ کرنے کے. تو شادی کا موقع ایسا نہیں کہ جس پہ آپ بہت زیادہ خرچ کریں. جی
جی, میں اپنا بھی بتانا چاہوں گی, شاید کسی کے لیے کوئی نصیحت ہو جائے ان شاء اللہ, کہ میں نے ابھی جتنا آگے کا نکاح کیا الحمد للہ, ہم لوگوں نے بس ایسے دین دار لڑکا دیکھا اور آنکھیں بند کر کے بس نکاح اس کا کر دیا. اور اب شادی کی جب بھی وہ رخصتی مانگی تھی میں کوئی اسٹریس نہیں ہے الحمد للہ, کسی قسم کی بھی تیاری کا شکر الحمد للہ کہ جب دین پہنچا تو کوئی بھی آپ کو ٹینشن نہیں.
جی بالکل, اپنے آپ کو ہلکا رکھیں. بہت وقت ہوتا ہے, زندگی بھر شوق پورے ہوتے ہیں, زندگی بھر انسان ملتا ہے لیتا ہے دیتا ہے, لیکن ان موقعوں کو آسان کرنا چاہیے. اصل چیز کے دین کی حفاظت, ہم دنیا کی حفاظت کرتے رہتے ہیں. اندر ہمارے لاشعور میں چٹکیاں کسٹری ہوتی ہیں کہ چلو دنیا تو اچھی ہے نا, تو یہ دعا کریں نصیب بچو سب کچھ ہو. پھر ایک اور چھوٹی سی بات ہے کہ ہم بہت سارا کیئر کرتے ہیں کہ جی لڑکی اچھی ہے, بیمار نہ ہو, لڑکا اچھا, بالکل ٹھیک ٹھاک کر کے دیتے ہیں, شادی کے سال بعد بیمار ہو جائے, اللہ نہ کرے حادثہ ہو جائے. کتنے واقعات آپ سنتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ ایسے ساری جس کو آپ کہنا چاہیے کہ زوال نعمت سے بھی ہمیں بچائے. بس سمپل طریقے سے کریں. اگر آپ کا مقصد اپنے دین کے کام میں ہے نا جڑا ہوا, تو آپ ان کاموں کو فٹافٹ نپٹائیں گے. نپٹو, تم بھی فارغ ہو, چلو تم بھی بھگتو, تم بھی بھگتو, اب تم جاؤ تمہارا نصیب ہے. ہر وقت ایک دماغ کے ساتھ نہیں سوچنا, تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس سے زندگی بہت آسان ہو جائے گی. جی آپ پیچھے سے. جی نکاح نہیں ہوتا جب لڑکی کا ولی نہ ہو. لڑکا تو کر سکتا اپنی شادی خود, کیونکہ وہ اللہ نے اس کو اختیار دی ہے, اور مرد میں تھوڑی سی پھر بھی آزادی ہوتی ہے, لیکن لڑکی اپنا نکاح خود نہیں کر سکتی. اگر ایسا کسی نے کیا تو ایز سون ایز اس لڑکی کے جو باپ یا بھائی ہیں جو بھی اس کے ولی ہیں ان کو تیار کریں ذہنی طور پہ کہ اب ہونا تھا جو ہو گیا, رہ بھی رہے دوبارہ ان کا واپس نکاح کروا دیں. جی تو اب تو اور بھی زیادہ ضروری ہے. جی اور بھی ضروری ہے, اس لیے کہ اس کے بغیر بات نہیں بنتی, اور یہ بہت ضروری چیز ہے. پھر ایک عموماً ماں باپ کی مجبوری پتہ کیا ہوتی ہے رشتہ کرنے میں, چھوٹا خاندان ہو, ساس نہ ہو. تمہاری ساس نہیں ہو سو لکی یو آر. آپ نے سنا ہے لڑکیوں کی باتیں, تم کتنی خوش قسمت ہے تمہاری ساس. ہاں یہ اکلوتی بہو ہو, پتہ لگ جائے گا جب اکلوتی جائے گی. وہ بیٹے کو چھوڑے گی نہیں ماں, کیونکہ وہ اتنی انسیکیور فیل کرتی ہیں اکیلے بیٹوں کی مائیں, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اگر لاڈ ایک ہی بہو کے دیکھنے ہیں تو ساری خدمت بھی تو اسی سے کرانی ہے. تو یہ جو باتیں نا کہ گھر والے نہ ہو اور لڑکا اکیلا رہتا ہو, شرائط ہوتی ہیں ہم ادھر رکھیں گے ادھر رکھیں گے, یہ صرف اور صرف ماں باپ کے دل کی جھوٹی تسلی ہے. اگر آپ دینا چاہتے ہیں نا اپنی بچی کو اور بچے کو, تو دعائیں دیں کہ بیٹا ہم جو کر سکتے ہیں وہ کیا, اب آگے تو جان اور تیرا نصیب جانے.